हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य ने हैरानी से दादाजी की तरफ देखा और तीनों भाइयों के चेहरे एक साथ उतर गए। सुबह का नाश्ता अब और भी दिलचस्प होने वाला था। आदित्य दादा को ऐसे देख रहा था मानो कि कहना चाह रहा हो कि यहाँ घर में लेडीज हैं, कम से कम तो ढंग से बात करें। दादाजी, अब क्यों इस तरीके से उस लड़की के सामने हमारी टांग खींच रहे हो? लेकिन दादाजी तुरंत उठकर अनामिका को पानी देते हुए बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये कैसा फंदा लग गया? अनामिका जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर अपना मुंह साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, कबीर की तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की ज़रूर मुझे नीचा दिखाने के लिए आई है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल वो जल्दी से खड़ा होकर कहने लगा, आई एम सॉरी जेंटलमैन, काफ़ी लेट हो चुका है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और फिर उसके बाद मुझे एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। तभी दिग्विजय जी उसे रोकते हुए बोले, आदित्य बेटा, मुझे तुमसे एक मिनट कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। तब आदित्य जल्दी बोला, जी अंकल बोलिए प्लीज़। लेकिन तभी बलवीर जी आदित्य को घूरते हुए बोले, अंकल अंकल क्या लगा रखा है, जिस तरह से मैं तुम्हारा दादा हूँ उसी तरह से ये भी तुम्हारे दादा हैं। इसके बाद दिग्विजय जी को आदित्य अपनी स्टडी रूम में ले गए और दिग्विजय जी जाते जाते बोले, तब तक तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ, और अनामिका बेटा तुम ब्रेकफास्ट करो। अनामिका फ्रूट खाते हुए इधर उधर देख रही थी। हॉल में माहौल थोड़ा अलग सा हो गया था। कबीर को अभय का इस तरह अनामिका को घूरना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी अभय अनामिका से बात शुरू करते हुए बोला, अच्छा आप क्या करती हैं? अनामिका ने बिल्कुल सहज अंदाज में कहा, मैं फिलहाल कुछ भी नहीं करती, ना अभी जॉब कर रही हूँ ना बिजनेस ज्वाइन किया है, अभी बस इंजॉय करना चाहती हूँ। अभय मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आज पहली बार किसी लड़की से मिल रहा हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है। अनामिका ने भौहें उठाई, व्हाट डू यू मीन? अभय हंसते हुए बोला, मेरा मतलब शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी मजबूत है, इसीलिए आपको ना स्टडी की टेंशन है ना बिजनेस की। अनामिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई स्टडी और आई हैव माई ओन बिजनेस ऑल्सो, बस अभी कुछ दिन पार्टी और इन्जॉय करना चाहती हूँ। अभय ने ताली बजाने का अभिनय किया, वाह, ब्रेन भी है और ब्यूटी भी, वरना आजकल खूबसूरती के साथ दिमाग कहाँ देखने को मिलता है। अनामिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, वो उल्टा कबीर की ओर देखने लगी मानो चाहती हो कि वो कुछ बोले। कबीर आखिर बोल ही पड़ा, अरे बस कर यार, क्या फालतू की बातें कर रहा है, और ये क्या कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता, जो लड़कियां माँ बाप के पैसों पर प्रेस करती हैं, मुझे तो ऐसी लड़कियां जहर लगती हैं, असली कामयाबी तो वही है जो अपने दम पर हासिल की जाए। जैसे ही कबीर ने ये कहा, अनामिका का चेहरा सख्त हो गया। वो सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई थिंक आपको अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है मिस्टर कबीर, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में अपने पैसे उड़ाऊं या अपने दादा के, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कबीर की तो जैसे बोलती बंद हो गई। वहीं अभय जोर से हंसते हुए बोला, ग्रेट, मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और एटीट्यूड पसंद आया। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो फोन स्क्रॉल करते हुए झलक को कॉल मिलाने लगी, कहाँ हो तुम, कब तक आओगे? उधर से मुस्कुराती हुई आवाज आई, क्या बात है अनु? अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ एक लल्लू को सबक सिखाना है और एक उसके साथ बहुत स्मार्ट बन रहा है, तुम होती तो मजा आ जाता। उधर से तुरंत गंभीर आवाज आई, कौन है वहां, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो मैं इसी वक्त आ जाऊं। अनामिका हंस पड़ी, अरे नहीं मेरी झांसी की रानी, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा, वैसे भी तुम जानती हो मैं मार्शल आर्ट जानती हूँ, सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन तुम होती तो और मजा आता। और मेरी जान एक बात बताओ, हमेशा लड़ाई लात घूसे और मुक्कों की ही नहीं होती, कभी कभी जुबानी लड़ाई भी होती है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये सुनकर झलक ने गहरी सांस ली और बोली, मैं जुबान की लड़ाई से ज्यादा लात घूसे और मुक्कों की लड़ाई पर विश्वास करती हूँ। ये सुनते ही अनामिका ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और सोचने लगी, पता नहीं मैं भी सुबह सुबह तुम्हें फोन क्यों मिला देती हूँ, जबकि तुम्हारा जवाब मुझे पता होता है। वाह मैडम फाइटर, ये कहकर उसने झल्ला कर फोन काट दिया। उधर झलक मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बुदबुदाई, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल स्टडी रूम में दिग्विजय जी ने कम शब्दों में आदित्य को कुछ बातें समझाना शुरू कर दिया था। आदित्य पूरी तरह हैरानी में डूबा हुआ बोला, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है, आखिर इन सब के पीछे है क्या? दादाजी ने गंभीर अंदाज में उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा मैं तुम पर इतना भरोसा कर रहा हूँ कि जान से भी ज्यादा कीमती जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, तो इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। देखो मैं तुम्हें पूरा सच नहीं बता सकता, बस इतना जान लो
कि तुम्हें उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहना है। वक्त आ चुका है तुम्हें उसकी परछाई बनने का। बलवीर जी ने भी सोचते हुए कहा, देख मैं तेरी बातों का पूरा मतलब भले ना समझूं, लेकिन इतना जरूर समझ गया हूँ कि अगर तू चाहता है कि ये सब हो तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर है। मैं तुझसे कारण नहीं पूछूंगा जब तक तू खुद बताना ना चाहे, और रही बात आदित्य की तो जो तूने कहा है वो जरूर करेगा। ये सुनकर दादाजी ने गहरी सांस ली और बलवीर जी का दिल से धन्यवाद किया। आदित्य अब भी उलझन में था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि आखिर झलक ने प्रोजेक्ट का काम खुद संभालने की बात क्यों कही थी। वो आगे बढ़कर दादाजी के पैर छूते हुए बोला, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, और वादा करता हूं कि इसके बदले में किसी तरह की कोई उम्मीद भी नहीं रखूंगा। क्योंकि दादाजी ने साफ साफ कह दिया था, तुम इसके बदले में झलक से किसी तरह के अपनेपन व प्यार की उम्मीद नहीं रख सकते। हो सकता है वो तुम्हें खुद से दूर करने के लिए उल्टी सीधी बातें कहे, तुम्हें ठुकराए, लेकिन तुम्हें हर हाल में सटीक तरीके से उसके साथ रहना होगा। आदित्य ने दृढ़ता से वचन दे दिया था कि जैसा दादाजी ने कहा है वैसा ही होगा। दादाजी चाहते तो खुलकर झलक का साथ दे सकते थे, लेकिन उनका इरादा झलक के साथ बुरा करने वालों को एक साथ बर्बाद करने का था। अगर अभी सारे पत्ते खोल देते तो शायद उन्हें उतना मजा नहीं आता। जहां तक सजा देने की बात थी, वे चाहते तो एक एक को गोली मरवा कर एक ही दिन में खत्म करवा सकते थे, लेकिन 20 साल तक उनका बेटा जेल में सजा काटता रहा और उनकी पोती का भरे समाज में जो अपमान हुआ था उसे वो इतनी आसानी से कैसे भूल जाते। एक गोली मार देने से जान तो चली जाती, लेकिन इतने से दर्द से क्या होता। दादाजी ने तय कर लिया था कि उन्हें कब क्या करना है। अब धीरे धीरे एक एक पत्ता खुलेगा और हर कोई अपने किए की कीमत चुकाएगा। दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उर्वशी जी वहां पहुंची। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, सिद्धार्थ बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अचानक आने से तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। सिद्धार्थ ने सीधा जवाब दिया, अगर आप यहाँ आए हैं तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। बताइए दादी क्या बात है, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप निश्चिंत रहिए, उस लड़की से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई इमोशन या फीलिंग बची है। हाँ ये सच है कि उसके इस तरह चले जाने पर और उसकी जान जाने की खबर से मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब नहीं। उसका चेहरा सख्त हो गया।
अगर उसने दोबारा मुझे तोड़ने की कोशिश की तो इस बार मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनकर उर्वशी जी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। उन्हें अब भी याद था जब झलक अपने बदले हुए रूप में वहां आई थी और सिद्धार्थ उसे देखकर जैसे जमसा गया था। वो घंटों मंडप में बैठा रहा, अगले दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, नशे में डूबा रहा। उन्हें डर था कि कहीं अगर झलक फिर से उसके सामने आकर उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वो फिर से बिखर ना जाए। इसी डर ने उर्वशी जी को आज यहां आने पर मजबूर कर दिया था।